हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। करण ने उसकी बात का जवाब दिया, आई थिंक वर्क टाइम ओवर हो गया है, तो घर और कहाँ जाऊँगा। शिविका ने उसे ऑफर दिया, अरे लेकिन यहाँ से तो ऑफिस भी काफी दूर है, तुम टैक्सी से जाओगे, चलो साथ ही। करण ने उसे बताया, हाँ लेकिन मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, अभी तो घर वापस जाना है ना, और मेरा घर यहाँ से पास में ही है, मैं चला जाऊँगा। शिविका ने बिना सोचे समझे बोल दिया, अच्छा हाँ ऑफिस क्यों जाओगे आप, वैसे मुझे तो पता ही नहीं है तुम्हारा घर कहाँ है। ये पूछने के बाद शिविका को खुद ही अपना ये सवाल बहुत ही बेतुका लगा, भला उसे कैसे पता होगा करण के घर के बारे में, और उसने कभी पूछा भी तो नहीं करण से, लेकिन आज अचानक से ये बोल दिया। करण ने धीमी आवाज में कहा, कैसे पता होगा, तुमने कभी पूछा ही नहीं आज से पहले, वैसे पूछा तो आज भी नहीं, मैंने खुद ही बता दिया। उसकी आवाज इतनी धीमी भी नहीं थी कि शिविका को कुछ सुनाई ना दे। उसकी बात सुनकर शिविका बोली, अच्छा मैं किस हक से पूछती हूँ, और वैसे भी तुमने भी तो मुझे इनवाइट नहीं किया आज तक अपने घर पर। शिविका की बात सुनकर करण ने बहुत ही हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि उसे शिविका से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अच्छा तो क्या अभी भी कोई हक नहीं है तुम्हारा मुझ पर। करण के इस तरह आंखों में देखकर बात करने पर शिविका ने जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाईं और इधर उधर देखने लगी, क्योंकि उसे करण की आंखों में एक तीव्रता नजर आ रही थी। शिविका हटते हुए बोली, नहीं नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, वो मैं। करण थोड़ी मायूसी से एक ठंडी सांस लेते हुए बोला, हाँ और रही बात इनवाइट करने की, तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें या किसी को भी वहाँ इनवाइट करूँ। उसकी बात पर शिविका ने पूछा, अच्छा तो ऐसा क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। करण ने उसी तरह मायूसी से शिविका की बात का जवाब दिया, कम से कम एक परिवार होना चाहिए जो साथ में मिलजुल कर रहें, आखिर उसी को तो हम घर बोल पाते हैं, या तो फिर घर इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें सब अलग अलग भी रहें तो एक दूसरे के होने या न होने का पता भी न चले, जैसे कि तुम्हारा घर है मतलब बंगला। ये सब कुछ बोलते हुए करण बहुत ही मायूस लग रहा था, और शिविका को भी कहीं न कहीं समझ आ गया कि जरूर कोई न कोई बात है उसके घर परिवार को लेकर जो करण को परेशान करती है। उसकी ऐसी बातें सुनकर शिविका कहीं न कहीं उसके बारे में आगे और जानना चाहती थी, उसके परिवार, उसकी परेशानियों के बारे में। भले ही वो उसमें इसलिए मदद कर पाई या नहीं, लेकिन उसे लगता था अगर वो करण से इस बारे में पूछेगी और वो उसके साथ शेयर करेगा तो उसे थोड़ा अच्छा लगेगा। शिविका भी ठंडी सांस भरते हुए बोली, अरे बड़ा घर या बंगला होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा परिवार तो हमारा भी कभी एक साथ नहीं होता, क्योंकि ऋषभ और डैड में नहीं बनती, वो तो तुम्हें पता ही चल गया होगा अब तक। उसके इस बात पर करण ने हाँ में अपना सिर हिलाया, तो शिविका ने कहा, देखो तुम्हें ऑलमोस्ट सब पता है ना मेरे परिवार के बारे में, और घर काम सब कुछ, लेकिन तुम्हारा मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं पता है। ये बात बोलते बोलते शिविका की आवाज़ थोड़ी सी धीमी हो गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आया उसके बाद क्या बोलना चाहिए या नहीं। तो करण ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ क्योंकि मैं तुम्हारे घर आ चुका हूँ और यहाँ पर काम भी करता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन तुम क्या करोगी मेरी फैमिली के बारे में जानकर, और वैसे भी जानने जैसा कुछ नहीं है। शिविका ने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया, अच्छा मुझे लगा तुम ये कहोगे कि मैंने तो आज तक तुमसे कभी कुछ पूछा ही नहीं और इसीलिए तुमने भी नहीं बताया, लेकिन तुम्हारा तो शायद कुछ बताने का प्लान ही नहीं है। अच्छा तो मतलब तुम मुझे शामिल ही नहीं करना चाहते अपनी जिंदगी में, और अभी हक की बातें कौन कर रहा था। करण ने सीधे तौर पर तो मना नहीं किया, लेकिन फिलहाल के लिए बात को टालते हुए बोला, अच्छा ठीक है पता चल जाएगा सब धीरे धीरे, लेकिन अभी चलो वापस चलते हैं, काफी टाइम हो गया है ना। इसके बाद वो शिविका के साथ कार में बैठ गया, लेकिन वो उसके साथ पीछे नहीं बैठा और आगे ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। शिविका पीछे बैक सीट पर अकेले बैठ गई। कार में लगे मिरर से बीच बीच में वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी ये बात पूरी तरह से जाहिर नहीं की, और नजरें मिलते ही वो दोनों इधर उधर देखने लगते थे। और कुछ ही देर में एक जगह पर पहुँचते ही करण ने ड्राइवर से कार रोकने को कहा और वहाँ से उतर कर जाने लगा। करण के उतरते ही कार की खिड़की से अपनी गर्दन बाहर निकाल कर देखते हुए शिविका ने पूछा, यहाँ पर है तुम्हारा घर। करण रुककर उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, नहीं यहाँ पर तो नहीं, यहाँ से थोड़ा आगे जाकर फिर उस गली में है, तुम तो इस एरिया में शायद कभी आई भी नहीं होगी। उसकी बात सुनकर शिविका बोली, अरे तो फिर अभी क्यों उतर गए तुम, आगे तक ड्रॉप कर देती हूँ ना। करण ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं वहाँ तक कार नहीं जाएगी, और अगर चली भी जाएगी तो फिर बैक करने में काफी दिक्कत होगी, और रहने दो तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, मैं चला जाऊँगा बाय। उसकी बात सुनकर शिविका देविका ने भी थोड़ा असहज महसूस किया और उसे भी लगा शायद वो थोड़ा ज्यादा ही व्यवहार कर रही है। खुद उसने ही उसे यहाँ तक ड्रॉप करने का ऑफर दिया और अब उसके घर तक छोड़ने के लिए भी बोल रही है। शिविका ने उसकी बात के जवाब में कहा, ओके बाय। करण ने मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए एक बार उसकी तरफ देखा और फिर आगे चला गया। शिविका अब तक कार के अंदर पीछे होकर बैठ गई और उसने ड्राइवर से सीधा घर चलने के लिए कहा। कुछ देर के बाद वृंदा मैंशन शिविका की कार घर पहुंची तो उसे वहां बाहर दरवाजे पर ही बैठा हुआ कोई नजर आया। असल में उसके बंगले के बाहर बड़ा सा मेन गेट है और उसके बाद अंदर जो गेट लगा है जिससे घर के अंदर जाते हैं वहां पर बैठने के लिए कुछ सीटें भी रखी हुई हैं और वहां पर ही कोई बैठा हुआ अपने फोन में लगा है। जब तक कार वहां से थोड़ा दूर थी तब तक तो शिविका को समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही कार दरवाजे के नजदीक हुई शिविका उस लड़के को पहचान गई। वो और कोई नहीं उसका छोटा भाई ऋषभ है और उसे देखते ही उसके साथ फोन कॉल पर हुई बात भी याद आ गई। बात क्या शिकायतें ही थीं जो ऋषभ उससे कर रहा था और उससे फोन पर बात करने के बाद शिविका ने उसे तुरंत ही घर आने के लिए बुलाया था, लेकिन अभी मीटिंग और फिर वहां से करण को घर ड्रॉप करके यहां वापस आने में तो उसे 3 से 4 घंटे लग गए हैं। ऋषभ एकदम निराश सा वहां पर बैठा हुआ है और उसे जैसे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है और न ही किसी से कोई उम्मीद। वह बस अपने फोन में ही लगा हुआ कुछ कर रहा है। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो एकदम से चौंक कर उसने पीछे देखा और फिर शिविका को देखकर वापस उसके चेहरे पर पहले की ही तरह खाली भाव आ गए। उसके ऐसे ठंडे रिएक्शन पर शिविका एकदम शिकायत करती हुई बोली, ऋषभ प्लीज ऐसा बर्ताव तो मत किया करो, तुम्हारी बहन हूँ मैं, कोई अजनबी नहीं हूँ जो देखकर दोबारा मुंह फेर लिया। शिविका ने ये सब कुछ बोला तो लेकिन ऋषभ के कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंची क्योंकि दोपहर की ही तरह उसने अपने दोनों कानों में ईयरफोन्स लगाए हुए हैं, इसीलिए उसने शिविका की इस बात पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं की। शिविका को गुस्सा आया और उसने ऋषभ का एक हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ करते हुए कहा, ये कौन सी बात होती है ऋषु, कम से कम कुछ तो बोल मुझसे। शिविका के ऐसा करने पर ऋषभ ने बुरा सा मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा और फिर एक हाथ से अपने एक कान का ईयरपीस निकालकर बोला, क्या है दी, कोई प्रॉब्लम है क्या?
शिविका उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, प्रॉब्लम तुझे थी मुझे नहीं, और तेरी वही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लेकिन पहले तू पूरी बात बताएगा नहीं मुझे तो फिर मैं क्या हेल्प करूंगी तेरी। ऋषभ ने अपनी एक भौं उठाकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, दी आप सच में मेरी हेल्प करना चाहते हो, सीरियसली? उसके ऐसे सवालों से चिढ़कर शिविका बोली, नहीं तो तुझे क्या लग रहा है, मजाक कर रही हूँ मैं यहाँ पर बैठकर। अब ऋषभ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बोला, अच्छा इतना ही सीरियस हो तो फिर 4 घंटे बाद क्यों आ रही हो, कब बात हुई थी हमारी कॉल पर, और पहले तो आपने मुझसे बताए बिना उस लड़की को घर में रख लिया, और फिर पापा तो जानते हैं हमेशा सामने कोई हमारा दुश्मन भी होगा ना तो उसकी साइड लेंगे मुझे छोड़कर। शिविका अपनी तरफ से पूरी बात समझाते हुए बोली, ऋषभ देखो मैंने प्रॉमिस किया था लेकिन तभी एक अर्जेंट मीटिंग में जाना पड़ गया, आखिर काम भी तो जरूरी है ना, लेकिन वो खत्म करके मैं सीधा यहाँ तुम्हारे पास ही तो आई हूँ। देखो अब तक मैं घर के अंदर काव्या से मिलने भी नहीं गई, वो भी तो मेरा वेट कर रही होगी ना, लेकिन तुम और तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्या है हर्षिता से? ऋषभ बहुत ही मायूसी से बोला, हाँ ठीक है जाइए आप काव्या के पास, मेरी बात तो वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं है और मैं यहाँ पर ही बैठा रहूँगा, और बता दीजिए कितने दिन रुकने वाली है वो लड़की, तो मैं अपने किसी फ्रेंड के यहाँ। वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही शिविका बीच में उसकी बात काटते हुए बोली, ऋषु पागल है क्या तू, तू क्यों रहेगा अपने किसी दोस्त के यहाँ, और वैसे भी पता नहीं वो लड़की कितने दिनों के लिए आई है, 6 महीने या फिर उससे भी ज्यादा, कुछ कन्फर्म नहीं है। ऋषभ अपना सिर पकड़ता हुआ बोला, 6 महीने में तो पागल हो जाऊंगा, इतने दिनों में और प्रॉब्लम, वो पूरी लड़की ही प्रॉब्लम है, जानती है आप ना उसको दूसरों के मामले में इंटरफेयर करने की इतनी आदत है, और फिर सारी चीजें वो जासूस बनकर यहाँ से बुआ जी को बताएगी, और फिर वो सब मैं नहीं चाहता। ऋषभ का हाथ पकड़कर शिविका उसे बहुत ही प्यार से समझाते हुए बोली, नहीं ऋषभ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं उसे अच्छी तरह से समझा दूंगी, और वैसे भी मैंने उसे नीचे ग्राउंड फ्लोर वाला गेस्ट रूम दिया है और तुम्हारा रूम तो फर्स्ट फ्लोर पर है ना, मैं उसे बोल दूंगी कि उसे ऊपर जाने की परमिशन नहीं है, और इसके अलावा कुछ भी बात हो तो। वो अपनी बात पूरी कर पाती उसे पहले ही उसे काव्या के चिल्लाने की आवाज आई, और काव्या की आवाज सुनकर ऋषभ और शिविका दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो दोनों उठकर घर के अंदर जाने वाले थे कि तभी उन्हें दरवाजे से भागकर बाहर आती हुई काव्या और उसके पीछे ज्योति भी नजर आई। शिविका जल्दी से उसकी तरफ भागी और शिविका को सामने देखकर तुरंत ही काव्या उसके पैरों से चिपक गई और डरी सहमी हुई आवाज में बोली, मम्मा अन्नर भूत भूत है घर में और उसने मुझे डरा दिया क्रमशः।